ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जब भी कोई भक्त किसी वस्तु को देखता है तो चाहे वह चर हो या अचर, तो वह तुरंत कृष्ण का स्मरण करता है। महाभागवत ज्ञान में बड़ा चढ़ा होता है। यह ज्ञान भक्त में सहज है क्योंकि वह भगवत गीता में पढ़े रहता है कि किस तरह कृष्ण भावनामृत को जागृत किया जाए। भगवत गीता के अनुसार सातवें अध्याय के आठवें श्लोक में रसो अहम अपसु कौंतय प्रभा अस्मि शशि सूर्य प्रणव सर्ववेदेशु शब्द के पौरुषम दिशु। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों का ओम शब्द हूँ और आकाश का शब्द तथा मनुष्य का पौरुष हूँ। अतः जब भक्त जल या अन्य द्रव पीता है तो तुरंत कृष्ण को स्मरण करता है। भक्त 24 घंटे कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है, इसलिए कहा गया है स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति। बुद्धि सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। संत पुरुष या महाभागवत 24 घंटे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं देखता। जहां तक चर तथा अचर वस्तुओं का संबंध है, भक्त इन सबों में कृष्ण की शक्ति का विकार मानता है। जैसे कि भगवद गीता 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गया है, भूमि या अनल वायु हम मन बुद्धि ये विषय अहंकार इति हमें भिन्न प्रकृति अष्टा। भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार ये आठों मेरे भिन्न भिन्न भौतिक शक्तियां हैं। वास्तव में कृष्ण से भिन्न कुछ नहीं है। भक्त जब किसी वृक्ष को देखता है तो वह जानता है ये वृक्ष दो शक्तियों भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का संयोग समन्वय है। कनिष्ठा शक्ति भौतिक है जिससे वृक्ष का शरीर बनता है, किंतु वृक्ष के भीतर आध्यात्मिक स्फुलिंग जीव होता है जो कृष्ण का अंश है। यह इस जगत में कृष्ण की उत्कृष्टा शक्ति है। हम जो भी सजीव वस्तु देखते हैं वह मात्र इन दोनों शक्तियों का समन्वय है। जब महाभागवत इन शक्तियों के बारे में सोचता है तो वह तुरंत समझ जाता है कि वे भगवान की अभिव्यक्तियां हैं। प्रातःकाल जब हम सूर्य को देखते हैं तो उठकर प्रातःकाल के कार्यों में जुट जाते हैं। इसी तरह भक्त भगवान की शक्ति को देखते ही भगवान कृष्ण का स्मरण करता है। इसकी व्याख्या सर्वत्र है निज इष्ट देव स्तुति श्लोक में की गई। जिस भक्त ने भक्ति के द्वारा अपने शरीर को निर्मल बना लिया है वह पग पग पर कृष्ण का ही दर्शन करता है। अगले श्लोक में जो श्रीमद् भागवत से लिया गया है 11:45 में इसकी व्याख्या हुई है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशक्त्या चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपं करामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतवर्गं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सार्वदूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगं ललिता श्रीशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराणी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देशतारिणी। आपको लिखा नहीं हुआ ना, इसे मैं बोलता हूं आप सुनिएगा, इसका अनुवाद पढ़ेंगे सब लोग। नाना भावे चंचल ताहे कमल नयन। अनुवाद दोहराइए मेरे पीछे। मैं देख रहा हूं कि आप मुख में वंशी धारण किए हैं और आपके कमल नेत्र विभिन्न भावों के कारण चंचल हो रहे हैं। संख्या 271। ऐ मतो मा देखी है चमत्कार कपटे कह प्रभु कारण इहा। मैं आपको इसी रूप में देख रहा हूं, यह अत्यंत अद्भुत है। हे प्रभु निष्कपट भाव से बतलाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु कहे कृष्ण तो मार गाढ़ प्रेम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप में कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है और जिस किसी को ऐसा होता है वह वस्तुओं को इसी तरह से देखता है, आप इसे निश्चय जाने। महाभाग देखे स्थाव जंगम कहां कहां है तार श्री कृष्ण स्फुरन। आध्यात्मिक पद को प्राप्त भक्त प्रत्येक चर तथा अचर वस्तु को भगवान के रूप में देखता है, उसे इधर उधर दिखने वाली सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण के ही स्वरूप जान पड़ती हैं। दो सौ 267 बयान में हमने पिछली बार पढ़ा कि तत्पश्चात रामानंद राय ने कहा कि उनके हृदय में अब एक ही संशय बचा है, अतः उन्होंने महाप्रभु से याचना करी कि आप मुझ पर कृपालु हों और मेरा संशय दूर करें। दो बातें यहां पर समझ में आ गई, एक जब प्रश्न उत्तर होते हैं तो प्रश्न का मतलब क्या है, संशय। भगवद्गीता पढ़ते हैं तो अर्जुन के मन में जो जो संशय आ रहे हैं वो प्रकट कर रहा है, भगवान को कह रहा है, भगवान उसका क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। ऐसी ही चर्चा यहां आ रही है। तो पहली बात तो यह है कि हृदय में कोई संशय रहना नहीं चाहिए, कोई भी संशय हो उसको आप भक्त के माध्यम से मिलकर क्लैरिफिकेशन ले लें कि साहब ये मुझे इस बारे में डाउट है, ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये मुझे क्लियर नहीं है, आप कृपया मेरी तो ये बात क्लियर कर दें। इसलिए संशय को मिटाना, संशय को हटाना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात जो इसमें कही गई है वो क्या है कि महाप्रभु से याचना करें, यही जो है प्रोसेस भगवद्गीता में बताया गया है, तद विधि प्रणिपाते परिप्रश्ने इसके गया कि विनम्र होकर विनीत भाव से आपको जिज्ञासा कर, जिज्ञासा आपकी जो है वो लड़ाई के मूड में नहीं होनी चाहिए, चैलेंज के मूड में नहीं होनी चाहिए, गुस्से के मूड में नहीं होनी चाहिए कि तलवार कदली करता तो उत्तर दो मेरे प्रश्न का, और अब तो बेचारा थरथर कांप रहा है कैसे उत्तर दूंगा, तलवार हटाओ तो बोलू। कहने का मतलब यह है कि यहां तो इस एक प्यार के अंदर ही बहुत सारी बातें क्लैरिफाई हो रही है कि आपको याचना करनी है, संशय को दूर करना। अब तीसरी बात आती है, भगवान से प्रार्थना करी जा रही है कि आप मुझ पर कृपालु हों, अर्थात आप कृपा करेंगे तो मुझको उत्तर देंगे, उत्तर देंगे तो मेरी याचना से आप प्रसन्न होंगे और मेरा संशय दूर होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी से प्रश्न का उत्तर चाहिए, संशय दूर करना है, तो उसमें आपका विनम्र होना, आपकी याचना करनी अति आवश्यक है, परंतु जिसने उत्तर देना है उसका भी कृपालु होना अति आवश्यक है। हम लोग साक्षात भगवान से याचना नहीं कर पाते हैं, उनसे उत्तर प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास आज की डेट में वो संभव नहीं है, तो हम जो है उनके जो प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं या जो उनके डिसाइपल्स हैं, जो सीनियर हैं, जो कि शिक्षा गुरु के लेवल पे आते हैं, हमको गाइडेंस देते हैं, काउंसलर हैं, उनसे हम जो है याचना करते हैं, उनसे उत्तर प्राप्त करते हैं, उनकी कृपा हमको चाहिए, तभी हमको उत्तर की प्राप्ति होगी, तभी हमारा संशय दूर होगा। अगले बयान में कहा गया है, रामानंद राय ने महाप्रभु से कहा, पहल पहल मैंने आपको सन्यासी की तरह प्रकट होते देखा, मैं श्याम सुंदर नामों के गोप के रूप में देख रहा हूं। भगवान कृष्ण का जो असली स्वरूप है, असली ओरिजिनल, वो गोप बालक का है। परम पुराण में उल्लेख आता है, शिव जी बता रहे हैं कि मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं कैलाश के सघन वन में तपस्या कर रहा था, तो मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर लक्ष्मी सहित विराजमान होकर मेरे समक्ष प्रकट हुए और मुझसे कहने लगे, आओ रुद्र, तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हारी अभीष्ट पूर्ण कर, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर। तो शिव जी कहते हैं कि मैंने इनसे कहा कि मेरे को आपके उस रूप के दर्शन चाहिए जिसे लोग निष्क्रिय कहते हैं, परात्पर कहते हैं, मनोरमोतीधारी कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं, सच्चिदानंद घन कहते हैं, उस रूप के दर्शन का। तो उन्होंने कहा कि उस स्वरूप के दर्शन करने हैं तो आप यमुना के किनारे पश्चिमी तट पर वृंदावन नामक ग्राम में आ जाइए, वहां मेरे असली स्वरूप के दर्शन होंगे। तो अब जब चिंजी जो है वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, 16 वर्षीय किशोर गोप बालक माथे पे मोर मुकुट धारण किए हुए है, हाथ में बांसुरी है, बाया कोनी एक षोडशी कन्या के कंधे पे रखा हुआ है, आसपास गोपियों का समूह है और सब गोपियां खेल खिला रही हैं। वेश कौन सा बताया, गोपाल। वही चर्चा यहां आ रही है कि मैं श्याम सुंदर नामक एक गोप के रूप में देख रहा हूं। अब भगवान कहते हैं कि आओ रुद्र, तुम मेरे जिस स्वरूप के दर्शन करना चाहते थे वो यही है, इसी स्वरूप को लोग निष्क्रिय कहते हैं, परात्पर कहते हैं, मनोरमूर्तिधारी कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं और सच्चिदानंद घन कहते हैं। मेरे इस स्वरूप के दर्शन इन चर्म चक्षुओं से नहीं किए जा सकते, इन चमड़े की आंखों से नहीं किए जा सकते, इसीलिए लोग मुझे अरूप या निराकार कहते हैं। मेरे गुण असीम हैं, अनंत हैं, जिनको मापा नहीं जा सकता, इसे लोग मुझे निर्गुण कहते हैं। ये भगवान की स्वयं स्टेटमेंट है। तो यहां जो है रामानंद राय क्या कर रहे हैं, उनको गोप के रूप में देख रहे हैं। आप फिल्म देखते हो ना, सीरियल देखते हो तो सीन कट 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 बदलता है, सीन बदलते हैं ना, यहां पर सीन बदल गया। अब कह रहे हैं, तुम्हार सन्मुख देखी कांचन पंचालिका तारंग और कांते तुम्हार सब अंग ठगा। अब मैं आपको सुनहरे गुड्डे की तरह प्रकट होते देख और आपका सारा शरीर सुनहरी कांति से आच्छादित है। दृश्य बदल गया, दृश्य बदल गया। अब वो बालक परिवर्तित हो गया, क्या निकल के आ रहा है, सुनहरे रंग के अंदर एक खूबसूरत गुड्डा, गुड्डा शब्द इस्तेमाल किया। कांचन पंचालिका, कांचन का अर्थ क्या होता है, सोना, सुनहरी। तो सुनहरी कांति से आच्छादित है। अब भगवान कृष्ण जो है अपना एक दूसरा स्वरूप दिखा रहे हैं, स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु का। ये प्रूव करने के लिए, ये शो करने के लिए कि मैं और श्याम सुंदर कृष्ण में कोई भेद नहीं, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, दोनों एक ही हैं। यहां पर मैंने लीला करने के लिए भक्ति के माध्यम से लोगों को भक्ति सिखाने के लिए स्वयं भक्ति करके दिखाई है, अपने आप को भक्त के रूप में प्रकट किया। भगवान कहते हैं, मन बना भगवत भक्तो मध्याजी मां नमस्तो, मन मुझे दे दो, मेरी भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। और फिर कहते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यक्षम मामेकम शरणम प्रजा, अर्थात एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, सब प्रकार के सामाजिक धर्मों का परिष्कार कर दो, उनको छोड़ दो, एक ही धर्म है वो है मेरी शरणागति। कैसे करना है, कैसे करना है, मुझे दुनिया का मान देना, आपको आता है, भगवान को मान दिया है, कितने लोगों ने दिया, कोशिश करते हैं, कोशिश। मन भगवान को देने का अर्थ यह है कि भगवान का एक क्षण के लिए भी विस्मरण ना होना, एक क्षण के लिए आपके मन में से भगवान विस्मृत नहीं हो रहे हैं। अगर विस्मृत होते हैं तो माया है। और क्षण कितना बड़ा, बहुत ज्यादा डिटेल्स में चुटिका वेद लव सब में न जाके सिंपल सी भाषा में बात करें तो कहा जाता है कि एक कमल के पत्ते को लीजिए, उसमें सुई छुआ दीजिए, सुई टच करेंगे एक क्षण हो गया, सुई कमल के पत्ते के अंदर गई दूसरा क्षण हो गया, बाहर निकली तीसरा क्षण हो गया। इतना समय भी भगवान कृष्ण का विस्मरण नहीं होना चाहिए, नॉट एट ऑल, नॉट एट एनी कॉस्ट। विस्मरण का मतलब है माया। अब मन तो हमने देना आता नहीं भगवान को, भक्त हम बने नहीं, सेट टू बी भक्त है। हाँ मैं चैंटिंग करता हूं, मैं भगवद्गीता सुनता हूं, भागवत सुनता हूं, पढ़ता हूं वगैरह वगैरह वगैरह, पर जो भक्त के गुण हैं, जो भक्त के लक्षण हैं, 26 क्वालिटीज दी गई है चैतन्य चरितामृत में, 12वें अध्याय में भगवद्गीता के 39 गुण दिए गए हैं, जो दूसरे अध्याय के अंदर 54वें श्लोक से लेकर 71वें श्लोक तक स्थित करने के लक्षण दिए गए हैं, क्या 14वें अध्याय के अंदर जो 21वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक चर्चा हुई है जो तीनों गुणों को लांग गया है उसके क्या लक्षण है, 16वें अध्याय के अंदर पहले से लेकर 30 श्लोक तक चर्चा हुई है दैवी प्रकृति के व्यक्ति के 20 लक्षण क्या है, क्या वो हमें हैं, क्या हम उनमें पूरा उतरते हैं, क्या हम अपने आप को भक्त कह सकते हैं? अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्त बनने की, भक्त बने नहीं, अभी हम साधक हैं, सिद्ध नहीं हुए। साधक और सिद्ध में क्या फर्क है? सिंपल एक लाइन का डिफरेंस है, एक लाइन का। साधक मींस वन हु इज प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है कृष्ण भावनामृत का। सिद्ध वो है जो कृष्ण भावनामृत हो चुका है, जो कृष्णा कॉन्शियस हो चुका है। दोनों में भेद क्या है? एक शब्द का भेद है, एक शब्द का, ओनली वन वर्ड, वो है इच्छा। साधक में अभी भी इच्छाएं हैं और जो कृष्णा कॉन्शियस हो गया है डिजायरलेस हो गया, कोई इच्छा नहीं, उसकी इच्छा केवल भगवान की सेवा की है। साधक के अंदर कहीं ना कहीं सटल लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे सूक्ष्म वासनाएं, सूक्ष्म इच्छाएं एग्जिस्ट करती हैं। तो यहां चर्चा आ रही है कि भगवान ने अपने आप को जो है पूरे रंग में प्रकट कर दिया, आपको भक्ति सिखाने के लिए भक्त के रूप में आए, भक्त के रूप कि भक्ति कैसे करी जाती है, शरणागति कैसे दी जाती है, भक्त कैसे बना जाता है, मन कैसे दिया जाता है, पूजा कैसे की जाती है, नमस्कार कैसे किया जाता है, इसको सिखाने के लिए उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। ये तो हो गया बहिरंगा कारण। अब कुछ अंतरंगा कारण भी है जिनकी चर्चा नहीं करेंगे हम, कि मेरी रूप माधुरी कैसी है, राधा का मेरे से प्रेम कैसा है, राधा मेरे प्रेम और मेरी रूप माधुरी से किस प्रकार का आनंद प्राप्त करती है। डिटेल्स में ना जाते हुए सिंपल सी बात है कि अगर आपको जानना है कि राधा का प्रेम कैसा है, आपको जानना है मेरी रूप माधुरी कैसी है, और आपको जानना है कि राधा इससे कितना आनंद प्राप्त कर रही है, तो भाई राधा बन के दे दो, बन जाओ राधा, राधा बनो और देखो। तो भगवान ने कहा बनूंगा, दो काम करूंगा, राधा के भाव में आऊंगा नंबर एक और भक्ति सिखाऊंगा नंबर दो, दो कार्य करने के लिए मैं आया। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहां देख रहे हैं, रामानंद राय को दिखाया जा रहा है कि मेरे में और श्याम सुंदर कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इट्स नो डिफरेंस। ये संशय अपने मन से दूर कर। अब इसके बाद है बड़ा अच्छा तात्पर्य लिख रहे हैं, दो तीन लाइन का प्रभुवाद। श्याम सुंदर तो श्याम रंग के हैं, किंतु रामानंद राय कहते हैं कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनहरे रंग में प्रकट देखा, श्री चैतन्य महाप्रभु का कांति में श्रीमद राधा रानी के शरीर का अंग शारीरिक अंग से ढक दिया। ये सेंटेंस जो है, सेकंड सेंटेंस जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्री चैतन्य महाप्रभु का कांतिमय शरीर राधा रानी के शारीरिक अंग से, शारीरिक रंग से ढका था। भगवान ने कहा कि मुझे राधा रानी का भाव लेना है, तो राधा रानी का रंग ले लिया। चैतन्य महाप्रभु गोरे रंग में, गोल्डन कलर में प्रकट हो गए, पर राधिका रमन गोरे क्यों है, काले क्यों है, कोई बता सकता है? राधा रानी के विषय में, राधा रानी के अंगों की जो कांति है वो इतनी ज्यादा आ रही है यहां पर कि उनका काला रंग छिप गया है, गोरा रंग, ब्लैक कलर इज हिडन। राधा रानी को कम न समझे, राधा रानी भगवान की आदरी शक्ति है, आनंद देने वाली। तो उनका जो गोरा रंग है एक बार इतना ऑपुलेंट हो जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है, देखा है दोनों में स्पर्धा चलती रहती है, कौन कितना सुंदर है इसकी स्पर्धा चलती। तो गोरा रंग जो है वो काले रंग को ढक देता है और गोरे दिखाई देता है। अब कह रहे हैं मैं देख रहा हूं, अब मुख में वंशी धारण किए हैं, आपके कमल नेत्र विभिन्न भावों के कारण चंचल हो रहे हैं। आपने कभी भगवान के नेत्रों को चंचल होते हुए देखा है किसी ने? देखा है? मूवी भी थी कृष्णा ने, मेरे पास एक नेट पे गौरा नेताई का पिक्चर आया था, दो फोटो आई थी मेरे पास, चौपाटी टेम्पल था, इस्कॉन चौपाटी से। कैमरामैन जो है वो फोटो खींच रहा है, जब फोटो सामने से ली जा रही है तो भगवान के नेत्र जो है फोटो के सामने हैं, आप फोटो देख सकते हो, मतलब लेंस की तरफ, कैमरे की तरफ जो है भगवान के दोनों नेत्र जो है वो दोनों गौरांग महाप्रभु के भी नित्यानंद प्रभु के सामने है। जब वो बाएं हाथ से फोटो ले रहा है, बाएं तरफ से जाके ले रहा है, तो भगवान के नेत्र दोनों के बाएं तरफ कैमरे की तरफ आ गए। ये चंचल चलते घूमते हैं, ये चंचलता है, आप देख सकते हो कि भगवान के नेत्र जो है वो चंचल है। दूसरा, आज से कोई 10 साल पहले की बात है, राधिका रमन जी का एक कैलेंडर बना था, मुझे कैलेंडर, वो कैलेंडर हमने फ्रेम कराया और घर में लगा दिया। उसमें हमने एक बात नोट करी कैलेंडर में कि अगर हम सामने खड़े हैं तो राधिका रमन जी आपकी तरफ देख रहे हैं, हम बाएं कॉर्नर में चले गए दीवार में उस पर वहां चले गए तो राधिका रमन जी वहां हमको देख रहे हैं, दाएं आगे तो राधिका रमन जी दाएं हमको देख रहे हैं। ऐसा ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, ब्यूटीफुल एक्सपोजिशन क्या शो करता है कि भगवान चंचल का मतलब है चलायमान, कभी इधर, बच्चा चंचल होता है ना, कभी यहां बैठा है, कभी वहां बैठा है, कभी इधर बैठा है, कभी उधर बैठा है। और आप कभी साक्षात दर्शन करिएगा आपके ठाकुर जी के, आपको नेत्रों में और चेहरे में डेली के हिसाब से, सुबह और शाम के हिसाब से भाव में अंतर दिखाई देगा। ऐसा लगेगा आज भगवान खुश नहीं है, कुछ उदास से लग रहे हैं, सेवा बढ़िया नहीं है, भाव प्रकट करते हैं, भाव नेत्रों से, एक्सप्रेशन से। कई बार हम देखते हैं कि ठाकुर जी आज बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, बड़े हैप्पी हैं, सजावट ऐसी हुई है कि बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, सजावट ऐसी हुई है कि आज कुछ उदास दिखाई दे रहे हैं, आज हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे, तो ये ठाकुर। तो यहां चर्चा आ रही है कि भगवान जो है बड़े ही चंचल दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको इसी रूप में देख रहा हूं, अत्यंत अद्भुत है, हे प्रभु निष्कपट भाव से बतलाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात जो है कि डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप देखे जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन आ रही हैं, देख रहे हैं कि भाई मेरा तो दृश्य बदल रहा है, ये फोटो बदल गई, ये फोटो बदल गई, ये फोटो बदल गई, जैसे हम लोग पन्ने पलटते हैं या टीवी में दृश्य बदलते हैं, ऐसे जो है दृश्य बदल रहा है। अब भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं, क्या उत्तर दिया कि ये तुम्हारा मेरे प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, उस प्रेम के अंदर तुमको अलग अलग लीलाओं के दर्शन हो रहे हैं। वो बात चैंटिंग के बारे में लिखते हैं कि जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे होते हैं तो आपको शब्द पे ध्यान देना चाहिए, लीला पर नहीं। लीला का स्मरण न करें, शब्द पे ध्यान दें, जो कान में शब्द जा रहा है उस पे कंसंट्रेट करें, उस पे ध्यान दें। जब आपकी चैंटिंग नाम अपराध से मुक्त हो जाएगी या प्रोग्रेस करती जाएगी नाम अपराध से मुक्ति प्राप्त करने की ओर, मतलब आप प्रोग्रेस करते जाएंगे, चैंटिंग आपकी प्योर होनी शुरू हो जाएगी, शुद्ध होनी शुरू हो जाएगी, आप उसमें परफेक्शन गेन करते जाएंगे, तब शब्द पे ध्यान तो आपका चल ही रहा है, लीला का स्मरण भी ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लीला विल कम ऑटोमेटिकली इन फ्रंट ऑफ यू। उस वक्त कौन सी लीला, अभी स्मरण करते हो, अच्छा गोवर्धन लीला याद कर लू मैं, शकट लीला याद कर लू मैं, की लीला याद कर लू मैं, घास की लीला याद कर, पुराना याद कर, आप एक लीला को पहले डेजिग्नेट करते हैं, ये लीला मुझे स्मरण करनी है, फिर उसका स्मरण करते हैं, तब जो है आपको डेजिग्नेट नहीं करना, लीला आपके अंदर ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएगी, आपको कुछ स्मरण करने की आवश्यकता नहीं। उसका मतलब क्या है जो यहां बताया जा रहा है कि अब आप में कृष्ण के प्रति अगाध प्रगाढ़ प्रेम है, इतना प्रेम है कि भगवान अपने आप को स्वयं आपके सामने प्रकट कर देंगे, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, बुलाने की आवश्यकता नहीं है, कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। और जिस किसी को ऐसा होता है वस्तुओं को इसी तरह से देखता है, ऐसा निश्चय मानो, वंस यू सी कृष्णा एवरीवेयर, यही बात जो है आगे कही जा रही है कि महान भक्त अर्थात महाभागवत हर वस्तु को चर तथा अचर करके देखता है। चर का मतलब है चलायमान, अचर का मतलब है जो चलायमान नहीं है, जो स्थावर है। भगवान ने सातवें अध्याय में भगवत गीता के, नवें अध्याय में भगवत गीता के, दसवें अध्याय के भगवत गीता में अपने ऑपुलेंसेस अपनी विभूतियों की चर्चा करें, असंख्य है, उतनी तो चर्चा नहीं हुई है और फिर भी काफी चर्चा हुई है। मकसद क्या है कि आप किसी भी वस्तु को देखते हो तो उस वस्तु के आपको कृष्ण को देखना है, ये उनका ही चमत्कार है, वही इसको बना सकते थे और कोई नहीं बना सकता था। आप किसी के घर जाते हैं, कार में देखते हैं, कार में शीशे के पीछे आपको डॉग्स रखे मिलेंगे, कपड़े के बने हुए, रूई के बने हुए, शेर भी मिल जाएगा, चीता भी मिल जाएगा, रखा मिलेगा, असली को बना पाया, ओरिजिनल को बना पाया, हाँ जी मैंने शेर बना दिया, वो कहता है साइंटिस्ट, हाँ जी मैंने टॉली भीड़ बना दी थी, मैं तो भीड़ बना देता हूं, मैंने टॉली भीड़ बनाई, साइंटिस्ट जो है क्लेम करता है। कृष्ण भक्त उनसे पूछता है आपने बहुत अच्छा किया, आपने टॉली भीड़ बनाई, परंतु ऐसा करते हैं कि उस भीड़ के अंदर जो केमिकल है, सामान है, वो मैं ला के देता हूं, उसे भीड़ बना के दिखाओ। भीड़ बनाई है लाइव सेल से, लाइव सेल जिस सेल में चेतना है, उस चेतना को डेवलप, उस सेल को डेवलप करके आप भीड़ बना रहे हो, आप केमिकल इकट्ठे करके आप सेल तैयार, कुछ भी नहीं बना सकते, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम जब भी कोई वस्तु देखते हैं, जब भी किसी चीज को देखते हैं, तो देखते हैं कि इसमें जो है कृष्ण का ऐश्वर्य है, कृष्ण ये भाव जब आ जाता है तब आप भगवान का प्रेम प्राप्त करने की पहली सीढ़ी पर चढ़ते हैं, क्योंकि श्रद्धा हो गई कि ये वासुदेवम सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभा, सब कुछ भगवान ही है, अहम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ उसे ही उद्भूत होता है, इस बात पे श्रद्धा कर। और श्रद्धा इतनी आसानी से नहीं बनती, इतनी आसानी से नहीं बनती। हम लोग कर्म करते हैं, कर्म का फल मिलता है, दो प्रकार के फल मिल रहे हैं हमको, एक अच्छा एक बुरा, ऐसे ही होता है ना। देखो मैंने कितनी पढ़ाई करी, मेरे को कितनी अच्छी नौकरी मिली, मेरे को महीने में 3 लाख रुपए का जॉब है, साल में 36 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। अब पढ़ाई करी, नौकरी नहीं मिली, कृष्ण बड़े निर्दयी हैं, मुझे नौकरी नहीं दी। जब अच्छा हो गया, बिजनेस में अच्छा हो गया तो मेरा, और नहीं अच्छा हुआ तो भगवान का कसूर। फील क्या है हमारी, हमारी फील है अच्छा अच्छा, मीठा मीठा मेरा, और बुरा बुरा, कड़वा कड़वा तेरा। तो भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त होगा, श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त होगा। तो जो एक भक्त है, जो महान भक्त है, जिसको कि महात्मा कहा जाता है, वासुदेवम सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभा, प्रत्येक वस्तु में कृष्ण को देखता है। एक बर्फ का घड़ा बनाया, किसका बनाया घड़ा, किसका बनाया, बर्फ का, पानी से भरी है और पानी के टब में डाल दिया, तो बाहर क्या घड़े में, घड़ा किसका बना है, घड़े के अंदर क्या है, सब कुछ क्या है, सब कुछ क्या है, कृष्ण। जिस दिन ये फील आ जाएगा कि एवरीथिंग इज कृष्ण, हमसे कई बार लोग कहते हैं अब ये शरीर है ये समाप्त तो हो जाए तो अच्छा है ना, वो तो मुदा में छलांग लगा दे, समाप्त करने में ज्यादा ही मुड़े। वो डॉक्टर के पास आया है, मेरे पास आके बैठा है, मुझसे कहता है मुझे इंजेक्शन लगा दो मैं मर जाऊं, मुझे गोली दे दो मैं मर जाऊं। क्यों भाई, तेरे पास ये मोबाइल है, खराब नहीं करना चाहता तू इसे, 10 साल भी पुराना हो जाए तो इसको तोड़ना नहीं चाहता, खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि तेरा है, तेरा है। ये शरीर बना है भौतिक प्रकृति का, और भौतिक प्रकृति किसकी है, भगवान की। तो इसको नष्ट क्यों करना चाहता है, जब समय आएगा नष्ट हो जाएगी, ओल्ड एज सबको आनी है, मृत्यु सबको आनी है, तब नष्ट होगी, उसको अपना ग्रेजुअल प्रोसेस में नष्ट होने दो। तुम इसे अपने हाथ से क्यों नष्ट करना चाहते हो, आई वी वॉन्ट टू स्पॉइल। तो हम लोग जो है जिस दिन ये समझ जाएंगे कि हर वस्तु भगवान की है, एवरीथिंग, हर चीज भगवान की है। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम आ रहे थे वापस, बहुत गंदगी पड़ी हुई थी पूरे रास्ते में, जगह जगह झुग्गियों वाले सब्जियां आगजियां गंद वाला, बहुत सारा कचरा कचरा। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा, सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें कृष्ण नहीं। अगर प्रत्येक व्यक्ति ये समझ लेता कि मेरा घर, मेरा दरवाजा, मेरे सामने की गली, मेरे सामने की मिट्टी, मेरे सामने का सामान सब कृष्ण का है, तो मुझे उसे साफ रखना, आई हैव टू कीप इट क्लीन, क्योंकि भगवान ने इसी दरवाजे से मेरे घर में आना, लक्ष्मी जी ने भी इसी दरवाजे से, मेरे दिवाली आती है ना तो दरवाजे खिड़कियां खुली रखते हैं, पत्तियां जला के रखते हैं, लक्ष्मी जी आए तो कम से कम घर खुला मिले, ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा फील आता है कि नहीं आता। कोई तो लक्ष्मी दिवाली वाले दिन घर के अंदर अंधेरा नहीं रहता, पत्तियां जलाते, हर कमरे में बत्ती जलाई जाती है कि लक्ष्मी जी आए सारे घर में निवास करो, प्रभु जी गलत तो नहीं कह रहा, और लक्ष्मी जी आपके घर में आएंगी, भगवान आपके घर में आए, घर के आगे आपने कूड़ा जमा कर रखा, गंद मचा रखा, सक्सेसफुल हो जाता है अगर लोगों के मन के अंदर ये भाव होता है, लोग कृष्ण को समझते कि यस एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, हमें यहां पे गंदगी नहीं करनी है, हमें गंद नहीं फैलाना है, क्योंकि मेरा घर भी कृष्ण का है, मेरी गली भी कृष्ण की है, सामने की मिट्टी भी कृष्ण की है, ये कोना भी कृष्ण का है, एवरीथिंग इज बाय हिम। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको समझते। अगर आप समझ ले कि सामने वाले के अंदर भी कृष्ण है जो आपके अंदर है, तो क्या आप उनको कष्ट दोगे? छोटी सी कहानी सुना के खत्म करता। दो मित्र हैं, झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हो गया कि चांद के दुश्मन बन गए। एक तो जरा पावरफुल था, उठा इसकी झोपड़ी आज फूक दूंगा, मिट्टी का तेल लिया, मशाल ली, माचिस ली, सब जला जुलू के वहां उसके घर में पहुंचा कि आज इसकी झोपड़ी फूक दूंगा, इसको उसी के अंदर फूक दूंगा, मार दूंगा इसको। जब वहां पहुंचा तो देखा दरवाजे पे एक जोड़ा जूते का रखा हुआ है और उस जोड़े को पहचानता है, जूता किसका है? उसके प्रिय मित्र का। अरे मेरा प्रिय मित्र इसके घर में क्या कर रहा है? अगर मैंने झोपड़ी को फूंक दिया तो मेरा प्रिय मित्र भी कष्ट पाएगा, वो भी फूंक जाएगा, क्या कष्ट, तकलीफ होगी, दुख होगा, कष्ट होगा। मुझे अपने प्रिय मित्र को कष्ट नहीं देना है, इसलिए मुझे झोपड़ी को नहीं फूंकना है, लौट के वापस आ जाता है। क्यों? कि वो अपने प्रिय मित्र को कष्ट नहीं देना चाहता, उसको कष्ट देना चाहता था परंतु प्रिय मित्र को कष्ट नहीं देना चाहता, वो उसके घर में विराजमान। भगवान है सूर्य सर्वभूतानां, सब प्राणियों के हितैषी हैं, सब प्राणियों के मित्र हैं, वो आपके हृदय में बैठे हैं और मेरे हृदय में भी बैठे हैं। अगर मैं आपको कष्ट पहुंचाता हूं तो मेरे मन में फील आना चाहिए कि भगवान भी उनके हृदय में बैठे हैं, वो भी तो कष्ट पाएंगे, क्या उनके प्रति अपराध कर सकता हूं, क्या उनके लिए बुरा सोच सकता हूं, क्या उनके लिए बुरा कर सकता हूं? तो यू विल नॉट डू। तो क्या होगा? निर्वैर सर्व भूतेषु, कि आप किसी भी प्राणी के प्रति वैर भाव नहीं रखते। अभी हम लोग जो है दूसरे प्राणी में, चर तथाचर की बात आ रही है ना, दूसरे प्राणी के अंदर जो है भगवान को समझते, अपने में नहीं भगवान को समझते, दूसरे में क्या समझते, अपने में भगवान उपस्थित है इस बात को श्रद्धा नहीं है, स्वीकार नहीं करते, तो दूसरे को क्या स्वीकार करते। इसलिए जो है जो महाभागवत है, जो जब चर अचर दोनों में भगवान को समझता है, तो उसको फिर जैसे समय आएगा उसकी बुद्धि दिव्य हो जाएगी, उसकी इंद्रियां दिव्य हो जाएगी, उसे हर जगह भगवान के दर्शन होंगे, हर स्थान पर भगवान के दर्शन होंगे। ये जो है इस प्यार का निष्कर्ष। हरे कृष्णा श्री गोपाल की जय। गौर प्रेमानंद।